जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के जगन्नाथ रथ यात्रा महा महोत्सव की श्री क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की श्रील प्रभुपाद की जय गौर वंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की थी भगवान जगन्नाथ का जो आविर्भाव है, किस प्रकार से भगवान इस धराधाम में प्रकट होते हैं अपने धाम के सहित। तो कल हमने ये भी चर्चा की थी कि स्वयं भगवान भी अपनी जो महिमा है उसको श्रवण करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। और शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत में उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जब परीक्षित महाराज ने लगभग 9 स्कंध है श्रीमद् भागवतम के उनको सुना, और जब परीक्षित महाराज के सामने शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन शुरू करने वाले थे, बल्कि परीक्षित महाराज ने बीच में देख सोचा कि ये शुकदेव गोस्वामी कर क्या रहे हैं, मुझे सारे जो राजा हैं उनके वंश विस्तार आदि हैं, अलग अलग अवतार हैं, उनका बड़ा तीव्र गति से वर्णन कर रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे शुकदेव गोस्वामी रुको, अभी थोड़ा सा रुको, आप बहुत तेजी से भाग रहे हो, सारी चीजें कैसे वर्णन करते जा रहे हो संक्षिप्त में, लेकिन अभी मैं जो भागवतम के हीरो हैं, भागवतम के हीरो कौन है कृष्ण है, तो हर एक जो ग्रंथ है वो एक श्लोक पर आधारित होता है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, अन्याभिलाषिता शून्य, ये उसका परिभाषा सूत्र है, वो पूरा ग्रंथ इस एक श्लोक पर आधारित है। उसी प्रकार से भगवद गीता सर्व धर्मान परित्यजः माम एकम शरणम व्रजः। तो भागवतम भी, भागवतम का परिभाषा सूत्र एक ही श्लोक है, और वो कौन सा है, एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारे व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो वहां भागवतम के प्रथम स्कंध में ही इस श्लोक का वर्णन आता है, जब लगभग 25 अवतारों का वर्णन करते हुए सुत गोस्वामी बीच में रुकते हैं और वो कहते हैं कि रुको, अभी मैंने इतने सारे अवतारों को बोला है, लेकिन ये सारे अवतार क्या है, एतेच अंश कला, पुनसहा, ये किसके अंश और कला है? कृष्ण के। जितने भी अवतार है उनके विस्तार है, उनके अंश है, कला है। तो लेकिन भगवान कौन है? तो वो कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? भगवान है। और वास्तव में भागवतम का प्राकट्य होने का कोई और उद्देश्य नहीं है। भागवतम ग्रंथ को प्रकट किया गया है केवल 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 कृष्ण की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए। और कृष्ण ही परम पुरुष है जिनका गुण, कथा, लीलाएं श्रवण करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है और कीर्तन करने योग्य है। और किसी अवतार की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से ही इस चीज को स्थापित करने के लिए व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम का संकलन अपने भक्ति के परिपक्व अवस्था में किया था। तो इस कारण से जब परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से सुनते जा रहे थे अब नरसिंह अवतार के बारे में सुना, कुर्मा, वराह, मत्स्य और भगवान राम 9वें स्कंद में, तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा अभी मुझे क्या करो, कृष्ण के बारे में सुनाओ। लेकिन आप बहुत तेजी से मत सुनाना, ऐसे मत सुनाना कि कृष्ण थे, उन्होंने मथुरा में प्राकट्य हुआ और वसुदेव उनको ले गए वहां वृंदावन, और इस प्रकार से बहुत तेज गति से मत जाओ। मैं कैसे सुनना चाहता हूं, इन डिटेल, विस्तार से। जैसे भक्त है वो हमेशा भगवान के बारे में बड़ा ही डिटेल में जानना चाहता है। अरे उन्नत भक्ति का एक लक्षण है, जैसे जैसे भक्त भगवत भक्ति में उन्नति करता है तो और गहराई में वो जाना चाहता है, और गहराई में भगवान के बारे में समझना चाहता है। भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है वो किस प्रकार से होता है, उसे भी वो बहुत गहराई से जानना चाहता है। और ये प्रेम का लक्षण है। इस भौतिक संसार में भी कोई युवक किसी युवती से प्रेम करता है तो एक दूसरे को कैसे जानना चाहते हैं, इन डिटेल जानना चाहते हैं ताकि वो आदान प्रदान कर सके। तो उसी प्रकार से ये भक्त का नेचर है, भक्त का ये स्वभाव है कि वो भगवान के बारे में, भगवान से संबंधित हर वस्तु, हर विषय के बारे में क्या करना चाहता है, विस्तार पूर्वक जानना चाहता है, सुनना चाहता है, समझना चाहता है, वर्णन करना चाहता है। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से कहा कि अभी कृष्ण लीला का वर्णन करने जा रहे हो तो थोड़ा विस्तार से सुनाओ, ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। तो शुकदेव गोस्वामी को लगा अरे बड़ा उत्साह दिखा रहा है सुनने के लिए, तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा इसको पूछ ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे परीक्षित, मैं देख रहा हूं लगभग 4 दिन हो गए थे कृष्ण कथा सुनते सुनते। तो उन्होंने कहा परीक्षित महाराज, और वो भागवत कथा कोई ऐसी नहीं थी कि बस 1 घंटे का श्रवण, 2-3 घंटे प्रसाद, ऐसे नहीं था, फिर उसके बाद लंबा विश्राम, नहीं। वो भागवत कथा कैसे थी, कंटिन्यूअसली 7 दिन और 7 रात्रि में, और बीच में कोई ब्रेक नहीं है। इस संसार में हर चीज में ब्रेक होता है। अब टेलीविजन लोग देखते तो उसमें कितनी बार ब्रेक देते हैं, तो वैसे ही यहां कृष्ण कथा में कोई ब्रेक नहीं था। लेकिन कलयुग के जो इतने मंद है, मंद सुमंद मत यहां, मंद भाग्य हिपद्रता, तो इनको हमेशा ब्रेक चाहिए। हाँ, तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि परीक्षित में देख रहा हूं 4 दिन हो गए, तुम एक स्थान से यहां से अपना पाव भी नहीं हिलाया। अभी 1 घंटे में हम कितना हिलते हैं क्लास के बीच में, तो वहां परीक्षित महाराज थोड़ा भी नहीं हिले। परीक्षित महाराज उस चातक पक्षी के समान थे जो मरने के लिए तैयार है, लेकिन पानी पीऊंगा तो कौन सा पानी पीऊंगा, वर्षा ऋतु का जो प्रथम जल है उसी को ही पीऊंगा। अरे पानी अवेलेबल है इधर उधर, कोई कहे कि वो पी लो ना, चातक पक्षी कहता है नहीं। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज बहुत भाग्यवान थे, शुकदेव गोस्वामी जैसे महान वक्ता से उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सुना था। और शुकदेव गोस्वामी कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात कौन है, राधा रानी के लेफ्ट हैंड में बैठने वाले तोते हैं, जिनका कार्य ही है कृष्ण का असीमित मात्रा में वर्णन करना। तो ऐसे उन्होंने कहा आप जाओ जरा ब्रेक ले लो, पानी पी लो, थोड़ा सा घूम टहल के आ जाओ। तो उन्होंने कहा यही तो मेरी प्रॉब्लम की, मेरी समस्या का कारण ये पानी ही है। मैं जंगल में शिकार करने गया और मुझे क्या लगी, प्यास। उस प्यास के कारण ही यहां बैठा हुआ अभी, और मुझे समस्या मोल नहीं लेनी है। उन्होंने कहा कि आपके मुखारविंद से निकला हुआ ये कृष्ण कथा का अमृत है, उसको मैं निरंतर पीना चाहता हूं। वयम तूना मित्र प्यामर, वो कहते हैं भागवतम में ये सारे मुनिगण कि कृष्ण कथा ऐसी है कि जितना अधिक कोई व्यक्ति श्रद्धा से और गंभीरता से सुनता है उसकी कभी तृप्ति नहीं होती, वो और पीना चाहता है और सुनना चाहता है। क्योंकि कृष्ण क्या है, उनकी कथा से अभिन्न है। कृष्ण जितने मधुर है उतनी ही मात्रा में कृष्ण की कथा, कृष्ण का वर्णन क्या है, मधुर है। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ही पात्रता की आवश्यकता है, श्रद्धा। श्रद्धा के साथ हम जब गंभीरता से बैठते हैं और कृष्ण की प्रसन्नता हेतु भगवान के बारे में सुनते हैं तो वो भगवत कथा हमें शुद्ध करती है। अन्यथा शास्त्र कहते हैं बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी वक्ता बोलता रहे और श्रोता सुनते रहे लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता। तो ऐसे परीक्षित महाराज उनके द्वारा सुनते हैं और वो कहते कि नहीं, मैं आपके कथामृत से तृप्त हूं, अभी मुझे कोई प्यास नहीं लग रही है ना भूख सता रही है, कोई चीज मुझे सता नहीं रही है। आप वो कहते आप बोलते जाओ, आप बोलते जाओ। शुकदेव गोस्वामी का उत्साह इतना बढ़ गया, हाँ वो इतना, फिर वो उत्साह के साथ कृष्ण का वर्णन करने लगे। क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं, जिनके हृदय में भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना है, उनके हृदय में भगवत कथा, भगवान का नाम रूप गुण लीला उस प्रकार से उमड़ती है जिस प्रकार से समंदर में लहरें आती हैं नॉन स्टॉप एक के बाद एक, उसी प्रकार से भक्त के हृदय में ये नाम रूप गुण लीला उमड़ती रहती है और वो भगवान के बारे में या उनका गुणगान करना चाहते हैं। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी से जो परीक्षित महाराज है विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। और ऐसी कृष्ण कथा को स्वयं कौन सुनने के लिए लालायित रहते हैं, साक्षात कृष्ण। हाँ, जैसे कल भगवान कृष्ण ने सुनी थी नहीं अपनी कथा, स्वयं भगवान ही अपने बारे में सुनने के लिए अत्यधिक लालायित होते हैं। और जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान जगन्नाथ अपने बारे में सुनने के लिए सदैव तत्पर है, बल्कि उनके कान नहीं है। जगन्नाथ डेटीज को कान है क्या, भगवान के विग्रह को है। तो भगवान जगन्नाथ सुनते हैं यदि कोई उनके जो भक्त है गंभीरता से या प्रेम पूर्वक उनके दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करते हैं। हाँ, इतना ये मधुर है। एक बार जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जिस मंदिर में निवास करते हैं उसको कहा जाता है श्री मंदिर। कौन सा मंदिर, श्री मंदिर। श्री मीन्स लक्ष्मी, श्री मीन्स श्रीमती राधा रानी। तो ये जो श्री मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल, उसका जो पूरा अधिकार वो किसके हाथ में है, लक्ष्मी देवी के हाथ में है। जैसे होता है ना घर में सब कुछ कौन संभालता है, पत्नी संभालती है, पति क्या करता है, धन अर्जन करता है। तो उसी प्रकार से ये श्री मंदिर में भगवान निवास करते हैं, और भगवान जगन्नाथ कभी अपने मंदिर को छोड़कर अधिकतर बाहर नहीं जाते, लेकिन सुबह सुबह वो निकलते कभी कभी वॉकिंग करने के लिए बलराम के साथ, या फिर साल में एक बार बाहर निकलते हैं। किसके साथ निकलते हैं? अपने भ्राता बलराम और अपनी जो बहन है सुभद्रा देवी, और वो भी भगवान के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं ही बाहर निकले। हाँ नहीं, उनको परमिशन लेना पड़ता है। क्या करना होता है? परमिशन, घर से बाहर। हाँ, क्या भगवान की, भगवान के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि एक कदम श्री मंदिर के बाहर डाल के देखे बिना परमिशन के। इसलिए चैतन्य चरितामृत में आता है, तहार सम्मति लया भक्त सुख देते। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जगन्नाथ बाहर कैसे निकले रथ यात्रा के दिन, वो कहते पहले लाइन कहते तहार सम्मति लया, सबसे पहले लक्ष्मी का परमिशन लिया, और बाहर निकले भी तो किस लिए? भक्त सुख देते। हाँ, ये दो चीजें, मतलब भगवान लक्ष्मी देवी का परमिशन लेते हैं रथ यात्रा के लिए बाहर निकलने के लिए, और बाहर निकलने का उनका एक में उद्देश्य क्या होता है? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना। जैसे वृंदावन में कृष्ण का कोई कार्य नहीं है, वृंदावन में कृष्ण केवल एक ही कार्य करते हैं, अपने लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद के सागर में क्या करते हैं? डुबो देते हैं, आनंद आनंद के सागर में डुबाते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ कभी बाहर नहीं निकलते, लेकिन कभी कभी ये जो कृष्ण कथा को सुनने के लिए चुपके से गायब हो जाते हैं रात्रि में मंदिर छोड़कर। तो एक बार एक पद्मा नामक एक युवती थी, एक छोटी सी बेटी थी, एक जो किसान था उसकी पुत्री, वो जयदेव गोस्वामी के द्वारा गाया हुआ एक गीत है, एक ग्रंथ है, और महान ग्रंथ है, जिसका नाम है श्री गीत गोविंद। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर को कहा, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बहुत ग्रंथ प्रिंट करना शुरू कर दिए, क्योंकि अधिक से अधिक ग्रंथ अवेलेबल होने चाहिए, तो भक्ति सिद्धांत महाराज प्रिंट करते जा रहे थे। तो उन्होंने अपने जो पिताश्री हैं भक्ति विनोद ठाकुर को पूछा, जो उनके शिक्षा गुरु भी हैं, कहा कि मैं गीत गोविंद को छापना चाहता हूं, ये जयदेव गोस्वामी का ग्रंथ। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा जरूर छापो, लेकिन कितनी कॉपीज छापो? दो। कितनी कॉपीज? एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए, क्योंकि ये जो गीत गोविंद है वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, वो असाधारण है। उसको समझना इस सांसारिक जीवों के इससे बुद्धि से परे है। जो व्यक्ति भौतिक भोग या भौतिक भोग की कामना से बिल्कुल ही मुक्त है, शून्य है जिसकी भोग की इच्छा, वो व्यक्ति वास्तव में क्वालिफाइड है गीत गोविंद को सीखने के लिए या समझने के लिए। तो ऐसे गीत गोविंद को वो जो छोटी सी बालिका है जिनका नाम पद्मा था, अपने खेतों में बैंगन के खेत थे, और मतलब ओडिशा में आप जाएंगे तो ओडिशा के लोगों के लिए एक गीत गोविंद बाथरूम सॉन्ग है। जैसे बाथरूम में हम मूवीज के लोग गाने गाते रहते हैं, डिवोटीज तो हरे कृष्ण मंत्र गाते होंगे, तो वहां बाथरूम सॉन्ग क्या है? गीत गोविंद। तो छोटा सा बच्चा हो तो बूढ़ा हो, हर कोई गीत गोविंद उसके मुख में है। तो ये जो बालिका है वो पद्मा बैंगन के खेतों में अपना टोकरी उठाए हुए थी, और टोकरी में बैंगन तोड़ते तोड़ते जा रही थी, और क्या गा रहे थे? गीत गोविंद। गीत गोविंद की कई पद हम गाते हैं ना, प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम, जो दशावतार स्तोत्र है, मंगल गीतम है, कई सारे सॉन्ग्स है वैष्णव पदावली बुक में, तीन चार सॉन्ग्स है उसमें से। तो ये इनको जब गाए जा रही थी वो, तो जगन्नाथ देव अपने सिंहासन से ऐसे लग रहा था कब बाहर जाओ, और उसमें भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है, भगवान की महिमा का वर्णन है। तो भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर को छोड़कर बाहर निकलते हैं और ये जो बालिका आगाते जा रही है आगे चलते जा रही है और भगवान जगन्नाथ उसके पीछे ऐसे डोलते हुए नाचते हुए उससे सुन रहे हैं, धीरे धीरे सुन रहे, आनंदित हो रहे हैं। और भगवान इतने निमग्न हो गए, इतने ध्यान मग्न हो गए कि उनको कुछ पता ही नहीं चला कि कितने समय से मैं मंदिर से बाहर हूं। और फिर जब जैसे ही उसकी टोकरी भर गई बैंगन से तो उसने गीत गोविंद गाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। भगवान जगन्नाथ फिर से अपनी बाह्य अवस्था में आते हैं और वो उनको याद आता है कि अरे मैं तो मंदिर से बाहर हूँ, इस खेत में हूँ और अपने आप को देखते तो सारे कपड़े बैंगन के कार्टून से फट गए हैं, मिट्टी यहाँ वहां लगी है, देखा कोई मुझे देखे ना, इसलिए दौड़ते हुए वापस मंदिर में गए। जैसे मंदिर पहुंचे फिर से बैठ गए अपने हाथों को सामने करते हुए, माला गले में डाल दी कि किसी को पता नहीं चले मैं कहा गया था। हाँ, तो सुबह सुबह जो पुजारीगण आए उन्होंने देखा, अरे ऐसे लग रहा है कि कल तो भगवान का श्रृंगार किया ही नहीं था। हाँ, ये क्या है, भगवान के जो ऊपरी वस्त्र है वो गायब है, किसी ने चुरा तो नहीं लिए और सारे वस्त्र फटे हुए हैं। तो पुजारी बहुत दुखी हो रहे थे और उन्होंने राजा को बुलाया और जैसे जगन्नाथ की सेवा में कुछ बाधा आती है तो सबसे पहले राजा को इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्योंकि जगन्नाथ के सबसे पहले सेवक कौन है, राजा गजपति जिनको कहा जाता है। आज भी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो आज भी जगन्नाथपुरी में राजा का निवास है, महाराज गजपति। तो उस समय फिर भगवान स्वयं ही उस राजा को स्वप्न आदेश देते और कहते हैं कि मुझे वो जो पद्मा जब गीत गोविंद का गान करती है तो मुझे रहा नहीं जाता मंदिर में, मैं तो उसके द्वारा उच्चारित उस कीर्तन को सुनना चाहता हूं। हम तो भगवान भी अपने बारे में सुनने में इतना अत्यधिक आनंद अनुभव करते हैं। तो राजा को कहा कि आप उस पद्मा को यहाँ बुलाओ और उनके परिवार आदि की सुव्यवस्था करो और उसकी एक ही सेवा दो उसको, क्या मुझे रोज सायंकाल में क्या सुनाना, गीत गोविंद। और आज इसलिए कहा जाता है कि भगवान जब उनको बुलाया गया उस पद्मा को तो ये जो पद्मा है नित्य प्रति एक विशेष ट्यून में भगवान जगन्नाथ के लिए गीत गोविंद का गान करते थे और भगवान जब तक सुनेंगे नहीं ना गीत गोविंद तब तक उनको नींद नहीं आती, ये विशेषता है। इसलिए धीरे धीरे कालांतर में ऐसी पद्माएं रही नहीं जो गीत गोविंद का गान करे। तो फिर क्या किया गया, जो वस्त्र है एक विशेष प्रकार के वस्त्र है, जैसे आप देखोगे इसको हमें हरिनाम चद्दर होती है जिस पर पूरा हरे कृष्ण मंत्र लिखा होता है दीक्षा के समय, तो उसी प्रकार से कपड़े में ओरिसा में भगवान जगन्नाथ के लिए इवन तुलसी की माला भी बनाते हैं तो उसके ऊपर चंदन से लिखा जाता है गीत गोविंद। तो भगवान को रात्रि में रोज रात्रि में जो वस्त्र पहनाते हैं उसमें पूरा गीत गोविंद क्या करते हैं, लिखते हैं, हम बुनते हैं प्रॉपरली और वो भगवान को पहनाते हैं। फिर भगवान बिल्कुल प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको वृंदावन का विरह होता है और एक गीत गोविंद वास्तव में वृंदावन के जो भक्त हैं विशेष रूप से गोपिकाएं ब्रज वधु या श्रीमती राधा रानी आदि की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका वर्णन है और जिसको श्रवण करने मात्र से या उस वस्त्र को जगन्नाथ को बांध देते हैं फिर भगवान क्या हो जाते हैं, निद्रिस्त या सो जाते हैं, तब उनको नींद आती है। तो इस प्रकार से इतना भगवान जगन्नाथ को प्रिय है। बल्कि एक बार जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक जो मोची है वो बैठा होता था लोगों के चप्पले जूते जो भी ठीक करने के लिए, और आप देखा है आजकल तो हम लास्ट वीक सोच रहे थे चप्पल को ठीक करने के लिए एक भक्त की, तो हम ढूंढने लगे मोची कहाँ मिल रहा है क्या, तो मैंने उन्हें कहा अरे आजकल मोची मिलते नहीं है, यूज एंड थ्रो का जमाना है, थोड़ा कुछ हो जाता है व्यक्ति फेंक देता है और नई चीज लेता है। लेकिन फाइनली एक मोची हमें मिला सराय में। तो वैसे ही जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक मोची बैठा रहता था और उसके पास चमड़े को मारने के लिए या कुछ करने के लिए एक पत्थर हुआ करता था और वो पत्थर के ऊपर पांव रखता था, पत्थर के ऊपर चमड़े से घिसाई करता था और मंदिर से कई सारे ब्राह्मण पंडित पुजारी बाहर आते थे। एक पुजारी जब बाहर आया तो उन्होंने इस मोची की तरफ देखा तो देखा, अरे मोची के पांव के नीचे कोई पत्थर नहीं है, ये तो क्या है, शालिग्राम शिला है। क्या है, क्या है? हाँ, शालिग्राम शिला भगवान से अभिन्न है। तुलसी देवी ने उनको शाप दिया था भगवान को, हाँ, जिसके कारण भगवान पत्थर, कहा कि आपका हृदय तो पत्थर के समान है, इसलिए आप क्या बन जाओ, पत्थर। हाँ, भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन तुम क्या बनोगे, तुलसी पत्र, जिसके द्वारा मेरी सेवा होगी। तो इस प्रकार से वो मोची अपना पाव रखता था, चमड़ा यूज करता था उसके ऊपर, और पुजारी ने देखा उस ब्राह्मण ने, अरे ये तो शालिग्राम शिला है, और शालिग्राम शिला की पूजा तो बड़े सुव्यवस्थित मंत्रोच्चारण के साथ हजारों तुलसी चंदन अर्पित करते हुए वेद उपनिषद आदों का उच्चारण करते हुए करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो अरे मूर्ख, हाँ शालिग्राम शिला पर पाव देके बैठे हो, तो उन्होंने कैसे तो शालिग्राम ली उससे और दूसरा पत्थर उस मोची को दे दिया। जैसे वो शालिग्राम शिला को ले गया ब्राह्मण, ब्राह्मण बड़े आदर सम्मान के साथ घर में षोडश उपचार 16 प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करने लगा, लेकिन शालिग्राम शिला साक्षात नारायण है, भगवान है, विष्णु है, उनको कोई आनंद नहीं आ रहा था, इनके चंदन और इनके मंत्र उच्चारण से परेशान हो गए थे। एक दिन शालिग्राम शिला ने कहा, भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता बहुत हो गया तुम्हारा चंदन, बहुत हो गया तुम्हारे मंत्र वेद उपनिषदों का उच्चारण, मुझे तो उस मोची के पास वापस ले चलो, क्योंकि मोची के पास मैं होता हूं वहां वो समय मेरे लिए सर्वाधिक आनंददायी है, क्योंकि वो मोची सदैव उसके मुख से गीत गोविंद का उच्चारण करता है। किसका उच्चारण करता है? गीत गोविंद स्तोत्र, गीत गोविंद जो भगवान के लीला चरित्र है उसका उच्चारण करता है, और उसको सुनने के लिए मैं लालायित हूं, चाहे उसके पाव के नीचे रहो या उस चमड़े के नीचे रहो, लेकिन मैं क्या सुनना चाहता हूँ, गीत गोविंद भगवान के अपने बारे में सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण उद्वेलित हुआ और वो वापस उनको ले जाता है। तो इस प्रकार से हमारे संप्रदाय में महान आचार्य हुए हैं जिनका नाम था जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी एक महान भक्त थे जिनका ये जो गीत है जिसके लिए भगवान जगन्नाथ पागल हो गए जिसको सुनने के लिए, उसी प्रकार से हमें श्रीमद् भागवतम आदि को श्रवण करने के लिए सदैव उत्साहित एवं लालायित होना चाहिए। तो ऐसे जयदेव गोस्वामी ने जब इस ग्रंथ की रचना की थी तो इतने फेमस हो गए, जैसे कोई व्यक्ति फेमस हो जाता है तो कुछ लोग जन्म लेते हैं ईर्ष्या करने के लिए उनसे, उनको लगता है अरे उनका फेम क्यों, मेरा भी फेम होना चाहिए, वैसे ही मेरा भी यश फैलना चाहिए, ये भी यश घोषुक त्रिभुवन। तो ऐसे वहां के जो राजा थे, राजा को लगा कि अरे सब लोग ये जयदेव गोस्वामी का रचित ग्रंथ गीत गोविंद को गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जगन्नाथ भी उनको सुन रहे हैं, तो उन्होंने सोचा मैं भी कुछ कम नहीं हूं, अभी नया ग्रंथ लिखता हूं। उन्होंने नया ग्रंथ की रचना की, उसका नाम रखा अभिनव गीत गोविंद। क्या रखा नाम? अभिनव गीत गोविंद। अभी राजा ने कहा कि मेरा ग्रंथ असली गीत गोविंद है और जगन्नाथ इसी को ही लाइक करते, इसी को ही सुनते हैं। तो ऐसे जब बहुत वाद विवाद हुआ तो फिर ये परामर्श दिया गया कि ठीक है दोनों के ग्रंथ उठाएंगे और अल्टर में जगन्नाथ के पास रखेंगे। कहाँ रखेंगे? और जिसका ग्रंथ रियली भगवान को प्रिय है भगवान उसका चुनाव करेंगे। जैसे आप तिरुपति गए हो, कितने लोग तिरुपति गए बालाजी का दर्शन करने, तो वहां भी ऐसे ही हुआ था।
तिरुपति में भी बालाजी है कंफर्म करने से पहले दो पार्टीज थी वहां हजारों साल पहले। एक था शैव शिवजी के डिवोटीज, दूसरे थे विष्णु के भक्त। तो शिव के भक्तों ने कहा ये शिवजी हैं, और विष्णु के भक्तों ने कहा ये कौन है, विष्णु है। तो फिर बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, और ये दोनों में हमेशा लड़ाई होती है, शिव के भक्त और विष्णु के भक्त आज भी। तो ऐसे वहां हो रहा था, तो रामानुजाचार्य ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि शिवजी के भक्त जो लीडर है वो डमरू और त्रिशूल ले ले और अल्टर में रख दे, और रामानुजाचार्य ने जो महान आचार्य है श्री संप्रदाय के, उन्होंने क्या किया स्वयं भगवान के लिए चक्र शंख चक्र गदा पद्म एक प्रकार से ये चीजें रखी वहां। और सुबह मंगल आरती में निर्णय होने वाला था कि ये शिवजी है या कृष्ण है या विष्णु है, तो दोनों पार्टी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो ग्रुप वहां से ओम नमो शिवाय का उच्चारण कर रहा था डमरू और सब बजाते हुए, यहाँ के भक्त करतार मृदंग लेते हुए क्या बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 राहुल। तो जो मंगल आरती का समय आया, तो और बोलिए मंगल आरती का समय आया तो पट पर्दा खुलने वाला था, तो दोनों ग्रुप बिल्कुल टेंपल के अंदर खड़े हो गए। आप सोच सकते हैं क्या जल्लोश हो रहा होगा वहां। और जैसे ही डोर ओपन हो गए तो देखा भगवान ने क्या उठाया हुआ था, शंख और चक्र अपने हाथ में उठाया हुआ था जो रामानुजाचार्य के द्वारा प्रदत्त था। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ये दोनों ग्रंथों को रखा, और दूसरे दिन सुबह जब जगन्नाथ का मंगल आरती का समय हुआ तो वहां जैसे भगवान के दरवाजे खोले तो देखा गया कि राजा महाराज धीराज जिनका जो अभिनव गीत गोविंद था उसको फाड़ तोड़कर भगवान ने क्या किया था, पूरे गर्भगृह में हवा से उड़ रहा था, यहाँ इस कोने से उस कोने में, लेकिन जय देव गोस्वामी कृत गीत गोविंद तो भगवान ने कहा लगा के रखा अपनी छाती में, इतना प्रेम। कोई वस्तु प्रिय होती है तो हमें कहा लगाते छाती में, इसलिए जेब कहाँ है पैसे इतने प्रेम करते हैं हम। तो यहाँ मैं कभी कभी सोच रहा था कि किसने ये ढूंढ के निकाला जेब कि जब यहाँ ही होनी चाहिए, क्योंकि हृदय को बहुत प्रिय है धन, इसलिए जेब को हमने यहाँ बना के रखा है बिल्कुल हृदय के साथ। तो उस प्रकार से भगवान इतना अधिक क्या करते हैं, प्रेम करते हैं जो जयदेव गोस्वामी हैं उनके इस दिव्य लीला चरित्र से। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ की अनलिमिटेड असंख्य लीलाएं हैं, और वास्तव में भगवान जगन्नाथ को कहा जाता है जैसे हम कृष्ण को कहते हैं कृष्ण करुणा सिंधु, आगे क्या है दीन बंधु, करुणा के सागर और दीन दुखियों के बंधु हैं। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ देव भक्त वत्सल है, क्या है, तो भक्त वत्सलता की जो सीमा भगवान जगन्नाथ ने प्रकट की है आज तक किसी विग्रह या अवतार ने प्रकट नहीं की। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से सर्वाधिक प्रेम रखते हैं, आज चाहे उनको कुछ भी करना पड़े लेकिन वो भक्तों के प्रति अपने प्रेम की जो भावना है उसको प्रकट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और कई बार भगवान अपनी ये जो प्रेम की भावना है सारी सीमाओं का उल्लंघन करके आप प्रकट करते हैं। आपने कई सारी कथाओं को सुना होगा, तो मैं कुछ दो तीन भगवान की लीलाएं सुनाता हूँ। जगन्नाथ देव जब जगन्नाथपुरी में होते हैं तो अलग अलग प्रांतों से अलग अलग लोग वहां पहुंच जाते हैं उनकी सेवा अर्चना आदि करने के लिए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी पहुंचे थे जिनका नाम था रघु। तो ऐसे ही रघु भगवान राम के भक्त थे, और जगन्नाथपुरी पहुंचे पहुंचने के बाद उनको लगा अभी तो मैं किसका दर्शन करूंगा, अंदर घुसते ही सीता राम लक्ष्मण और हनुमान, तो ऐसे इनका दर्शन करूंगा। तो जैसे वो अंदर गए तो भगवान जगन्नाथ सोचने लगे, अरे मेरा प्रेमी भक्त आ रहा है और मेरे कौन से रूप से वो प्रेम रखता है, कौन से, राम। तो उसी समय भगवान ने तुरंत व्यवस्था कर दी, हाँ तुरंत क्या हो गए, बदल गए, सीता राम लक्ष्मण के रूप में खड़े हो गए, रघु आकर उनका दर्शन कर रहे और इतने संतुष्ट हो गए जैसे तुलसीदास भी जगन्नाथपुरी गए थे, उन्होंने भी भगवान जगन्नाथ को हाँ सीताराम लक्ष्मण के रूप में वहां दर्शन किया था। आज भी उनका एक स्थान जगन्नाथ मंदिर के सामने है। तो वहां जब ये रघु ने दर्शन किए बाहर आए और उन्होंने सोचा अभी मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, तो रघु ने बहुत सुंदर हाँ फूलों को एकत्रित किया और माला बनाने लगे। कई बार हम सोचते अरे माला बनाना एक छोटी सी सेवा है, लेकिन हम भूल जाते हैं माला हम बनाते हैं प्रेम से, भगवान स्वयं अपने गले में पूरे दिन धारण करते हैं। कब तक धारण करते हैं, पूरे दिन, जिसको हम हाथ लगाते बोनते हैं बनाते हैं, भगवान प्रेम से उन मालाओं को स्वीकार करते हैं और उससे सुगंध हाँ फ्लावर जो फूलों का सुगंध है उसको लेते रहते हैं। तो ऐसे रघु ने माला बनाई लेकिन उनके पास धागा नहीं था, तो केले का जो वृक्ष है उससे धागे निकलते हैं, उससे उन्होंने धागे से फूलों की माला बनाई और सोचा भगवान जगन्नाथ को अर्पित करता हूँ। बड़े उत्साह के साथ सीढ़ियां चढ़कर पहुंच गए जगन्नाथ मंदिर में और एक पुजारी के हाथ में दिया। जैसे पुजारी ने माला उठाई तुरंत डांट लगाई, उन्होंने कहा भाग यहां से, हाँ ये जो अशुद्ध है, हाँ ये जो केले की जो धागे से बनी हुई माला है इसको हम अर्पित नहीं करेंगे, निकल जाओ यहाँ से। बड़े दुखी होकर रघु वहां से बाहर आए, रोते जा रहे थे और भगवान जगन्नाथ भी यहाँ दुखी हो गए। जब संध्या का समय हुआ रात्रि में, भगवान जगन्नाथ जब सोने जाते हैं तो एक विशेष प्रकार का आभू वस्त्र वो पहनते हैं या विशेष प्रकार का ड्रेस होता है जिसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश, मतलब भगवान जगन्नाथ वृंदावन के वेश को धारण करते हैं। दिन में भगवान जगन्नाथ अलंकार सुवर्ण आभूषण आदि पहनते हैं, लेकिन जैसे ही संध्या हो जाती है सोने का समय होता है तो भगवान वृंदावन के जो आभूषण, वृंदावन में जिस प्रकार से वो वस्त्र धारण करते हैं वैसे वस्त्र धारण करते हैं, और अधिकतर भगवान शाम के समय में फूल और तुलसी को पहनते हैं क्योंकि वृंदावन में भगवान यही धारण करते थे। तो ऐसे भगवान का जब श्रृंगार हो रहा था शाम को, तो पुजारी जो भी फूल लगाए भगवान के शरीर पर सारे गिरते थे, मालाएं टूट के गिर जाते थे, फ्लावर्स गिरते थे, एक भी फूल भगवान ने स्वीकार नहीं किया। तो पुजारियों ने कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, कोई हमसे अपराध हुआ है। पुजारियों ने कहा कि हम कुछ नहीं खाएंगे और यहाँ मंदिर में अभी सोएंगे। तो जैसे ही सो गए वो भगवान स्वप्न में आकर कहते हैं कि ये यही कारण क्यों है ये सब चीज, क्योंकि मेरे जो भक्त एक माला लेकर आए थे इतना प्रेम से स्वयं उन्होंने बनाया, तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, अशुद्ध कहकर उसे फेंक दिया, भगा दिया, तो मैं कोई भी चीज अपने शरीर पर धारण नहीं करूंगा। तो ये सारे पुजारी बाहर जाते हैं, बाहर जाते ही एक छोटे से कुटिया में मंदिर के सामने वो रहते थे रघु, उनको जाकर निवेदन करते हैं और उनको पूरे आदर सम्मान के साथ माला के साथ लेके आते हैं और फिर भगवान को माला पहनाई जाती है और भगवान जगन्नाथ बहुत प्रेम का संबंध, मित्रवत संबंध उस रघु से रखते थे। तो ऐसे रघु के साथ उनका प्रेम का संबंध था और सारे जगन्नाथपुरी में वो इतने फेमस हो गए कि भगवान किससे बहुत अधिक मित्रमय संबंध या प्रेम रखते हैं, तो किससे रखते हैं, रघु से। और भगवान को कुछ चाहिए या अपने मन की कुछ बात होती है तो भगवान उस रघु को बोलते हैं। तो एक बार भगवान जगन्नाथ को कटहल खाने की इच्छा हो गई, क्या खाने की इच्छा हो गई, हाँ जैसे हमें भी कई सारी इच्छाएं होती रहती हैं, तो ऐसे भगवान जगन्नाथ को लगा कि कटहल खाना है, अभी कटहल का सीजन आ गया है क्योंकि राजा का बहुत बड़ा बाग था, पके हुए कटहलों का सुगंध वहां आ रहा था जगन्नाथ मंदिर तक। तो भगवान को लगा अभी बहुत सात दिन हो गए, ये लोग हमेशा मुझे कई सारे अलग अलग फल अर्पित करते रहते हैं, कभी कटहल अर्पित नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि कैसे बताओ किसे। तो भगवान बोल भी सकते हैं किसी को भी, अरे कटहल अर्पित करो बाबा बहुत दिन हो गए, लेकिन ऐसे नहीं किया। वो अपने मित्र के पास गए, रघु के पास। रघु को कहा, रघु हम चलते हैं राजा के बाग में, कटहल खाने की इच्छा हो रही है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप तो कटहल तो मैं अभी दो चार तोड़ के ले आता हूँ, आपको अर्पित कर दूंगा राजभोग में, अब खाते रहो मस्ती के साथ। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वृंदावन की याद आ रही है। वृंदावन में माता यशोदा कई किलो मक्खन खिलाती रहती थी, लेकिन उसमें कुछ आनंद नहीं था। लेकिन जो मक्खन घर से बाहर निकल कर मित्रों के साथ दूसरों के घर में जाकर चोरी करके खाने में जो आनंद है, वो आनंद वैसे नहीं है जो लोग अर्पित करते रहते हैं। उन्होंने कहा तुमको भी आनंद दिलाता हूं, चोरी करके खाने में कितना आनंद है, हे रघु तुम्हें भी ये आनंद में शेयर करता हूं तुम्हारे साथ। तो रघु ने कहा ठीक है। तो ये दोनों निकलते हैं शाम रात्रि में। तो भगवान जगन्नाथ और ये रघु, भक्त का मतलब है भगवान की सेवा के लिए किसी भी रिस्क को लेने के लिए क्या होना, तैयार हो जाना। जितना बड़ा भक्त है, जितना भगवान से अधिक प्रेम है, उतनी बड़ी वो क्या करता है, कृष्ण सेवा के लिए रिस्क लेता है। प्रेम का एक लक्षण है रिस्क लेना। तो जैसे प्रभुपाद ने रिस्क ली 70 साल की आयु में, वृद्ध अवस्था में 40 रुपए, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, भारत को छोड़ा अमेरिका पहुंचे। कितना बड़ा रिस्क है, किसके लिए, कृष्ण भावना के प्रचार के लिए। तो वैसे ही रघु ने रिस्क लिया, जगन्नाथ के साथ उस गार्डन में चले गए जहां कटहल के पेड़ ही पेड़ है। कटहल का पेड़ किसने देखा है आप में से, सबने देखा है हाँ। जैसे कि बच्चों को पता नहीं होता दूध कहाँ से आता है, तो कहाँ से आता है कहते हैं, कौन देता है, मदर डेयरी, गाय दूध नहीं देती। पानी कहाँ से आता है, नलके से। तो इस प्रकार से कटहल का जो वृक्ष है उसके जो फल है वो नीचे से शुरू हो जाते हैं, मतलब नीचे से जड़ से लगते हैं इतने सारे हजारों हजारों। तो भगवान जगन्नाथ पहुंच गए बड़े से वृक्ष के पास जो कटहल से भरा हुआ था, और फिर भगवान जगन्नाथ की दृष्टि ऊंचे सबसे ऊपर पहुंची जहां दो बड़े बड़े कटहल थे। और उन्होंने कहा रघु, रघु ने कहा जी सरकार। रघु तो तैयार थे, जो जगन्नाथ कहे वो करने के लिए तैयार, सिंपल है। अल्टीमेटली हमें सेवक बनना है, आचरण दास वतन इच्छा सप्तम स्कंद में आता है कि परफेक्शन क्या है, दास बनना है, और जो कहा जाए कृष्ण सेवा के लिए वो करना है, यस मैन बनना है। तो वैसे ही ये यस मैन थे जगन्नाथ के। जगन्नाथ ने कहा देखो इतनी ऊंचाई पर कटहल है, तुम तो जानते हो मैं चढ़ नहीं सकता, अभी देखो मेरे पास ना हाथ है ना पाँव है, लेकिन फिर भी चल के गए भगवान वहां उनके साथ, यही उनकी अचिंत्य शक्ति है। तो ऐसे जगन्नाथ ने उनको कहा कि आपको ऊपर चढ़ना होगा, और ऊपर जाओगे तो ठीक से बड़ा पका हुआ मधुर कटहल को क्या करना, नीचे भेज देना। तो जैसे रघु ऊपर पहुंचे, देखा बड़े दो कटहल थे और उसमें से एक कटहल को तोड़ने वाले थे। तो रघु ने कहा भगवान जगन्नाथ आप नीचे हो ना, कैच करने के लिए तैयार हो, मैं ऊपर से कटहल छोड़ रहा हूं। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा मैं तैयार हूं। तो रघु ने बड़े मेहनत के साथ बेचारे चढ़े थे, और चढ़कर भी उन्होंने तोड़ा उस कटहल को, और कटहल को जैसे ही ऊपर से छोड़ा जगन्नाथ वहां से गायब। जैसे गायब हो गए तो वो इतना बड़ा कटहल इतने ऊंचाई से गिरा, गिरकर कई भागों में टुकड़े हो गए, और इतना जोर से आवाज हो गया
उस गार्डन में जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो दौड़ते हुए आए, चोर 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 कहते हुए। अबे, और रघु ऐसा कोई छोटा सा भक्त नहीं था कि आज ही वो ज्वाइन हुआ है, हाँ इसको अपने आज ही ज्वाइन हुआ एक माला जप करना शुरू किया था, नहीं, जगन्नाथपुरी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो रघु को नहीं जानता था और शुद्ध भक्त के रूप में परिचित थे वो पूरे जगन्नाथपुरी में, राजा महाराजाओं तक। और ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया, क्या करते हुए आप सोच सकते हैं, हाँ तो वो ये अभी गार्ड्स आ गए, उन्होंने कहा नहीं तो प्रभु जी तो बहुत फेमस है, अरे तो मध्य रात्रि में चोरी कर रहे हैं कटहल की बाग में। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, अभी गार्ड बेचारे क्या बोलेंगे उन्हें। तो गार्ड ने सोचा कैसे बताए कि अभी ये चोर है और इनको नीचे उतारे। तो उन्होंने कहा चलो बेस्ट है, राजा को बता देते हैं ये महान शुद्ध भक्त चोरी करने आए हैं गार्डन में। तो फिर राजा को लाया गया, गजपति महाराज आए, गजपति ने देखते ही क्या किया, पांचा कल्प तरु वैश्य परिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, प्रणाम किया उन्हें। और उन्होंने कहा कि रघु, बोला क्या, आपको यदि कटहल ही खाना था तो आप मुझे बताते, मेरे किसी सेवक को बताते, मैं कटहल बैलगाड़ी भर कर भेज देता आपकी कुटिया में। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए नहीं, ये किसने मुझे फंसाया है, जगन्नाथ ने फंसाया है। तो ऐसे जगन्नाथ देव अपने भक्तों के साथ लीलाओं का आदान प्रदान करते हैं और फिर वहां से उनकी छुट्टी होती है और फिर जगन्नाथ को मंदिर में कटहल अर्पित किया जाता है। और वास्तव में जो रघु थे, इतना उनका सेवा का आदान प्रदान हुआ था कि वो जगन्नाथ के मन की बात जानते थे, एक विशेष लक्षण है भक्त का। तो जब अंग्रेजों के समय में एक अंग्रेज जो अधिकारी था उसने लिखा अपने आर्टिकल में, ये रघु उस समय था जब ये अंग्रेज थे, तो जब रथ यात्रा का समय आया और भगवान जगन्नाथ रथ के ऊपर सवार हो गए, और लेकिन रथ कितना भी खींचा जा रहा था तो रथ खींचा नहीं जा रहा था, मतलब चाहे हाथी लगाओ घोड़े लगाओ कुछ भी लगाओ, भगवान का जो रथ है एक स्थान से हिल भी नहीं रहा था। तो ये जो अंग्रेज अधिकारी थे वो सब परेशान हो गए। तो उनको, उन्होंने रघु को देखा, कहा कि ये जानते हैं सब कुछ जगन्नाथ की मन की बात। वो रघु के पास गए और रघु को कहा देखो ना, आपके जो स्वामी है मास्टर है ये हिल ही नहीं रहे, टस से मस नहीं हो रहे हैं, कई घंटे से हम लगे पड़े हैं। तो ये रघु कहते आप ही दिखाता हूं। ये रघु दौड़ता है और दौड़कर रथ के ऊपर जाता है, भगवान के कान में कुछ बोल के नीचे आता है। जैसे नीचे आ गए रघु तो रथ तीव्र गति से चलने लगा। तो अंग्रेज अधिकारी रघु को कहता है कि तुम्हारे स्वामी भी क्या है, पूर्ण है, और तुम भी वास्तव में पूर्ण हो। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं और सारे संसार का उद्धार करते हैं दो चीजों से, जैसे मैंने कहा था कल, एक है उनके दर्शन से और दूसरा है उनके प्रसाद से। जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ, बोलिए। हाँ, तो हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए जगन्नाथ के सामने, उनके प्रसाद। प्रसाद का मतलब है कृपा। तो ऐसे जगन्नाथ का प्रसाद पाने के लिए हर कोई जीव, चाहे स्वर्ग ब्रह्मलोक से लेकर नीचे लोकों तक, तो हर लोगों का जो जीव है, हर एक व्यक्ति वहां आता है जगन्नाथ का प्रसाद प्राप्त करने के लिए। तो एक बार इंद्र देवता आ गए, बहुत सुना प्रसाद बहुत अच्छा, जैसे ना इस्कॉन की खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, कितने भक्त केवल भक्त बने हैं खिचड़ी खाकर। हाँ, कई सारे डिवोटी जिनको मैं जानता हूँ, बड़े बड़े सन्यासी भी खिचड़ी खाकर क्या बने, भक्त बने। कुछ याद रहे या ना रहे, वो कहते आपके मंदिर की खिचड़ी को बोल नहीं सकता मैं, लाइन में लगा के खाने का जो आनंद है वो और कहाँ नहीं प्राप्त होता। तो ऐसे इंद्र ने भी बहुत सुना जगन्नाथ का प्रसाद बड़ा मधुर है, सुस्वादु है, तो अपना रथ लेके आ गए ऐरावत हाथी के साथ और आकर समंदर के किनारे लैंड किया। उन्होंने लैंडिंग हो गया, उनका जो ऐरावत हाथी है
वहां से पैदल पैदल जगन्नाथ मंदिर में आए और प्रवेश करने लगे, तो बहुत भीड़ जा रही थी जगन्नाथ मंदिर में। तो जगन्नाथ मंदिर में आप इतना विशाल है, आपको पता नहीं चलेगा राइट जाओ लेफ्ट जाओ कहां जाओ, लेकिन सबसे सेफ क्या है, जहां भीड़ जा रही है वहां जाओ, आपको जगन्नाथ के दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सरल है उपाय। तो ये इंद्र भी गए लोगों के पीछे भीड़ भीड़ में। जैसे हमारे एक महाराज है, अफ्रीकन महाराज थे, भक्ति तीर्थ स्वामी, अभी नहीं रहे वो, 2005 में उन्होंने शरीर छोड़ा, विदेशियों को तो अलाउ नहीं है। अब वो अफ्रीकन है तो बहुत काले हैं ना, अफ्रीकन होते हैं, तो उन्होंने सोचा जान जी इस जन्म में एक बार तो जगन्नाथ मंदिर में जाऊंगा कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, अभी इंडिया के साउथ इंडियन लोग भी काले होते हैं, तो फिर उन्होंने सोचा साउथ इंडियन जैसा बनता हूं। उन्होंने गमछा डाल दिया और कुछ ऐसे वस्त्र पहन लिए, और जहां भीड़ थी माताएं बच्चे सब जा रहे थे उनके बीच में घुस गए। अना इनको हिंदी आती है ना उड़िया आती है ना बंगला आती है, और गए, उन्होंने सोचा कहां जगन्नाथ जी हैं। तो उनको पता था जहां भीड़ जा रही है वहां चलो। तो आर्टिकल उन्होंने लिखा था एक बुक में, तो कहते हैं कि बहुत डर लग रहा था, और मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा था ऐसे लग रहा था कि हर कोई व्यक्ति केवल मुझे ही देख रहा है। और वो कहते भीड़ भीड़ में गया, मैं गया तो भगवान के सामने जगन्नाथ पुरी आप गए, तो एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा लगाया होता है जिसके पास से आप जगन्नाथ को देखते हो, वहां तक वो पहुंच गए और अपना सौभाग्य का वर्णन करने लगे, भगवान की कृपा को देखने लगे कि देखो मैं कहां मृच्छ देश में पैदा हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से उनका दर्शन मैंने कर लिया अंदर जाकर, और भगवान को देख रहे थे। तो उसी समय एक पंडा ने उनका हाथ पकड़ लिया ऐसे जोर से, वहां के पंडाल बहुत बलशाली हैं, ऐसे हट्टे कट्टे होते हैं, तो हाथ पकड़ा। तो इन्होंने सोचा यदि वो पूछे कुछ उड़िया में हिंदी में तो क्या बोलूं, मुंह खोलूंगा तो मुंह परमानेंटली बंद हो जाएगा, इतना पिटाई करेंगे वो पंडाल। तो उन्होंने क्या किया, अपना हाथ उनके हाथ से निकाल दिया और वो सोचने लगे मैं भागता हूँ ऐसे, तो भीड़ से चलने लगे बाहर। उस रास्ते से निकलते तो वहां पुलिस वगैरह खड़े होते हैं आज भी, तो वो कहते कि मुझे लगा कि अभी ये पुलिस ने मुझे पहचान लिया और मुझे देख रहे हैं, कहते भगवान की कृपा से मैं सेफली बाहर आ गया। तो ऐसे ही ये इंद्र जब अंदर चले गए जहां भीड़ जा रही है, गए गए दर्शन किया और फिर से दूसरी भीड़ बाहर आ रही थी। दर्शन के बाद भीड़ कहां जाती है, प्रसादम में। तो वो भीड़ कहा आनंद बाजार में, जो वहां प्रसादम का एरिया है जगन्नाथ का, जैसे हमारा प्रसादम एरिया का नाम क्या है, गीता भवन। तो वहां जगन्नाथ का जो प्रसादम एरिया है उसका नाम क्या है, आनंद बाजार। क्या नाम है, जोर से बोलिए। तो ऐसा बाजार है जो हर एक को आनंद देता है। अभी सोचो कोई व्यक्ति अपने परिवार को लेकर मॉल में जाता है तो पत्नी बच्चे के मुंह में तो बड़ी हंसी खुशी होती है, लेकिन जो पति है उसके मुंह में थोड़ी सी ये होते हैं कि अरे इतना पैसा खर्च कर लेंगे हम, ये लोग दुखी होता है बेचारा। तो लेकिन ये ऐसा बाजार है कि जहाँ हर कोई आनंदित है, बच्चे से लेकर पत्नी और सब कुछ। तो ये इंद्र भी सबके पीछे गया और जहां कई सारे व्यंजन वहां दिए जाते हैं, सेल होते हैं। तो अब इंद्र वहां गए तो इंद्र ने बहुत सारा लालय होकर बहुत प्रसाद खाया भी और लिया भी, पैक भी किया कि अभी स्वर्ग ले जाता हूँ, मेरी पत्नी सची रंभा उर्वशी सबको बांटता हूँ जगन्नाथ प्रसाद। तो बड़े डब्बे सारे पैक किए और निकलने का समय आया तो उस जो प्रसाद सेल करने वाला भक्त था उसने हाथ पकड़ा, कहा अरे बिना पैसे लेके जा रहे हो, कहते हैं अरे मेरे पास इंडियन करेंसी नहीं है। और वास्तव में इंद्र के पास कहां होगी इंडियन करेंसी, रुपीस टका। तो उन्होंने कहा सही में नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तुम कुछ भी वर मांगो, मैं इंद्र हूं, तुम जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार हो, लेकिन पैसे इस संसार का ये ऐसा धन नहीं दे सकता कि नोट्स कागज के। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा मैं इंद्र हूं और आप मुझसे कुछ मांगो। हाँ, तो इंद्र ने अपना हाथ निकाला और चलने लगे। ये जो शॉपकीपर था वो भी इंद्र के पीछे चलने लगा और एक स्थान आता है जहां इस्कॉन मंदिर है जगन्नाथपुरी में, उस स्थान का नाम है स्वर्ग द्वार। क्या नाम है? आज भी एक छोटी सी शिला वार लगाई हुई है जो इस बात का प्रतीक है कि इंद्र यहाँ आए थे, ये जगत में आए थे उस स्थान में और वहां से वापस गए थे। तो वहां जब इंद्र पहुंचे तो उन्होंने कहा मैं इंद्र हूं, आप मुझसे वर मांगो। तो इंद्र से उन्होंने मांगा सही में तुम इंद्र हो तो थोड़ा बारिश करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा अभी करता हूं बारिश। तो बारिश होने लगी तो उन्होंने कहा कि मुझे ये वर दो कि मैं जब चाहूं जहां चाहूं क्या हो जाए, बारिश हो जाए। अभी उनसे वर लेकर और फ्री प्रसाद तो ले गए सारा इंद्र और आए यहाँ मार्केट में मंदिर के अंदर, वो मार्केट टेम्पल के अंदर ही है। और वहां खड़े होकर उन्होंने सोचा चलो इंद्र से वर लिया है, प्रसाद तो सारा चला गया बिना पैसे के, तभी देखता हूँ बारिश होती है क्या। तो उन्होंने कहा अभी बारिश हो जाए। इतनी बारिश आ गई केवल टेम्पल के अंदर ही बारिश हो रही थी, जगन्नाथपुरी में बारिश। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे देवी देवतागण जगन्नाथ प्रसादम के लिए लालयित रहते हैं और वहां आते हैं। इवन भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए विभीषण हर रात्रि में भगवान की सेवा करने के लिए विभीषण वहां आते हैं। एक बार एक पंडा जब रात्रि में बाहर निकल रहा था तो उन्होंने देखा रे हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा इतना ऊंचा व्यक्ति कौन अंदर घुस रहा है, और ये तो त्रेता युग की पर्सनालिटी है विभीषण। तो देखा उन्होंने कहा अरे मुझे पहचानते नहीं हो, मैं कौन हूँ? विभीषण हूँ। तो उन्होंने कैसे समझे हम कि आप विभीषण हो? विभीषण ने कहा मेरे हाथ का क्या कहते हैं आदमी, कड़ा, क्या कहते शब्द, कड़ा ना हाथ पे पहनते ना लोहे का लोग पहनते हैं कड़ा, हाँ। तो वो उन्होंने कहा ये मेरा कड़ा आपको देता हूँ। और वो कड़ा दिया आज भी किसी पंडा के घर में है, कहते हैं जो जिसकी साइज बैलगाड़ी की चक्के के समान है, हाँ बहुत रेयर भी लोग उसको देखते हैं। तो सारे देवी देवतागण महान महान पर्सनालिटीज जगन्नाथ की सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से जगन्नाथ की सेवा क्या हो गई है, अत्यधिक सरल हो गई है। हाँ पापी तापी जता छिलो कोई भी व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का क्यों ना, स्त्री वृद्ध बालक युवा, हर कोई भगवान जगन्नाथ की सेवा कर सकता है श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। एक तो कई सारे व्यंजन खुद खाते रहते हैं और दूसरा भक्तों को खिलाते हैं। उनका जो भी व्यंजन उनके उसमें है, जो भी भगवान व्यंजन खाते हैं उसकी हर एक व्यंजन के पीछे एक स्टोरी है। बीच में हम कुछ साल पहले वहां गए तो हमने देखा नहीं बूंदी का लड्डू भी है यहाँ, तो बूंदी लड्डू देखा तो बड़ा आकर्षण हो गया, बूंदी लड्डू खाते हैं। तो वहां के पंडा को पूछा कि बताओ ये बूंदी लड्डू कैसे आ गया जगन्नाथ की सेवा में। तो उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो ये जो समंदर है ये हमेशा अपनी सीमा का उल्लंघन करके आ जाता था अंदर, और जगन्नाथपुरी के कई सारे घर लोगों को डुबा देता था, हर रोज का ये कार्य था। तो जगन्नाथ जी परेशान हो गए समंदर को कैसे रोका जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा किसी की सेवा लगाते समंदर को ये करने के लिए, रोकने के लिए। तो एक महान विभूति की सेवा लगाए जिनका नाम था हनुमान जी। क्या नाम था? हनुमान को बड़े बड़े कार्य करना अच्छा लगता है, समंदर को रोकना, पहाड़ उठाना, जंप लगाना, ये सब बड़े बड़े सेवा, छोटे छोटे कार्य अच्छा नहीं लगता। तो पर हनुमान को कहा कि हनुमान जी आप ध्यान देना, ये समंदर अपनी सीमा का उल्लंघन करके अंदर नहीं आना चाहिए। तो जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक मंदिर है जहां एक हनुमान जी है, उनका नाम है कान फाटे हनुमान, मतलब हनुमान जी हमेशा अपना कान ऐसा लेकर खड़े हैं, वो समंदर की आवाज लेके रहते हैं, आगे तो नहीं आया। समंदर अपनी सीमा उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, जोर से आवाज आती है ना जब आगे आता है, तो बड़े से हनुमान है। आप दक्षिण द्वार में जाएंगे तो आप देख सकते हैं। जगन्नाथपुरी रियली बहुत अमेजिंग स्थान है। हर स्थान में जगन्नाथ कथा भरी हुई है। हाँ, तो बड़ा वंडरफुल धाम है जगन्नाथ, और जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी बहुत सारी जगन्नाथ की कथाएं हैं। तो ऐसे हनुमान जी वहां खड़े रहते थे। फिर हनुमान ने सोचा, अरे क्या यहाँ आ गया हूँ, मैं तो कहा अयोध्या में रहा करता था, वहां तो बूंदी के लड्डू मिलते हैं और क्या क्या, यहाँ तो भात ही भात मिलता है, भात खाओ दालमा खाओ और क्या क्या खाना पड़ता है ना जगन्नाथपुरी में। वो हनुमान जी परेशान हो गए वो प्रसाद में। जब शुरुआत में भक्त लोग कहते यहाँ चपाती नहीं मिलती, राइस ही राइस खाना होता है, तो हनुमान जी भी परेशान हो गए वहां। और फिर हनुमान ने कहा, रात्रि का समय अच्छा है, कहां जाता हूं, अयोध्या। तो ऐसे हनुमान जी तो अभी तो समंदर अंदर आना रुक गया था, लेकिन एक दिन हो गया समंदर फिर से अंदर आया। श्री श्री राधा गोविंद देव के, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री श्री पंचतत्व के। तो एक दिन समंदर जी अंदर आ गए, और अंदर जैसे आए तो सबने जगन्नाथ जी को कंप्लेंट की। जगन्नाथ ने सोचा, अरे हनुमान जी तो है वहां, क्या हुआ आज हनुमान। तो पता चला कि उस रात्रि में हनुमान वहां नहीं थे, बूंदी लड्डू के चक्कर में कहां पहुंचे थे, अयोध्या। तो वहां बूंदी का लड्डू खाने के लिए। तो जगन्नाथ ने कहा, कल से क्या करो, एक चीज ऐड करो मेरे भोगा में, कौन सी, बूंदी के लड्डू। तो आज भी बूंदी के लड्डू रोज भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाते हैं। और फिर देखा ये भागते रहते हैं, तो भगवान ने क्या किया, इनको बेड़ी 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 डाल दी, मतलब उनको बांध के रखा है अभी समंदर के किनारे। मैं एक दिन उनका दर्शन करने चार बुझ के गया था, ये स्टोरी सुनने के बाद का बेड़ी हनुमान, उनका नाम क्या पड़ा फिर, बेड़ी हनुमान। और कहा इनको बेड़ी डाल दो और बूंदी के लड्डू रोज खिलाओ, तो फिर ये अयोध्या के लिए भागेंगे नहीं। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के जितने भी अलग अलग व्यंजन हैं, उन सब व्यंजनों के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है। और भगवान वास्तव में अपने भक्तों को सबसे अधिक आनंद प्रदान करने के लिए ये सारे लीलाएं करते हैं। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा ये उनकी सर्वोच्च लीला है, गोपियों के प्रति सर्वोच्च प्रेम का प्रदर्शन ये कृष्ण की विशेष लीला है। और ये विशेष लीला क्या है, उसका रहस्य, भक्त सुख देते। रथ के ऊपर बैठने का कृष्ण का कोई प्रयोजन नहीं है, रथ के ऊपर बैठकर केवल भगवान उनसे प्रेम करने वाले भक्तों को ऊपर से देखना चाहते हैं, ये भगवान की विशेषता है। और इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, भक्त सुख देते, मतलब भक्तों को आनंद प्रदान के लिए, प्रदान करने के लिए रथ यात्रा वास्तव में होती है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि रथ यात्रा का भाव इसी प्रकार से होना चाहिए कि कृष्ण लैया ब्रजे जावो, ए भाव अंतरे। क्या भावना होनी चाहिए कि कृष्ण को लेकर मैं ब्रज जा रहा हूं या ब्रज जा रहे हो, ये भावना होनी चाहिए। मतलब हम कृष्ण को खींच रहे हैं। और हमारे जीवन में वास्तव में हर रोज रथ यात्रा है। रथ यात्रा का मतलब क्या है, कृष्ण को खींचना। हम माला भी करते तो कैसे करते, इधर ही खींचते ना माला, आगे तो नहीं घुमाते, कैसे घुमाते हैं, इधर खींचते रहते माला को, हरि नाम को खींचते, प्रसादम को भी क्या करते हैं, खींचते हैं। तो हर रोज रथ यात्रा हमारे जीवन में है। श्रवणम के द्वारा, कानों के माध्यम से किसको खींच रहे हैं, कृष्ण को खींच रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि रथ यात्रा एक दिन के लिए है, तो हर रोज रथ यात्रा के मोड में रहना चाहिए। और ये प्रभुपाद के द्वारा ये संभव है। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसा अद्भुत लीला चरित्र है भगवान जगन्नाथ का। और भक्त से अपेक्षा की जाती है उसका मन, उसका हृदय, उसकी वाणी हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से क्या हो जाए, भरा रहे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त का ये एक लक्षण है, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्ता में उसका चित्त मुझ में लगा रहता है, मतलब गत प्राणा, मैं नहीं उसके जीवन में उसका प्राण चला जाएगा, गत प्राणा। कथयन्तस्य माम नित्यम, मेरी कथा आपस में मिलकर वो करते हैं श्रवण आदि। तो इस प्रकार से ये भक्त का गुण होना चाहिए और ये भावना होनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान कैसे प्रवेश करते हैं, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवत में, हे जगन्नाथ देव आप मेरे नयनों के रास्ते से क्या हो जाए, मेरे हृदय रूपी प्रांगण में प्रवेश कीजिए और वहां निवास कीजिए। तो वहां हृदय में निवास तब करेंगे जब हृदय में भगवान के लिए अल्टर हो, सिंहासन हो और गंदा नहीं, कैसे होना चाहिए, साफ सुथरा। तो साफ करने का दिन कल आ रहा है, गुंडीचा मंदिर मार्जन। तो कल का दिन क्या है, परसों भगवान आने वाले हैं, तो कल के दिन एक भक्त अपने हृदय का मार्जन अधिक से अधिक करता है ताकि भगवान जगन्नाथ देव आकर हृदय में क्या करे, निवास करे। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और वास्तव में कभी सोचता था कि ये जो साल है इस्कॉन में, पूरे साल में तीन अलग अलग धामों के फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। जैसे अक्षय तृतीया आती है तो सब जगन्नाथपुरी की ओर के फेस्टिवल शुरू होते हैं, और अभी ये बलराम जयंती आएगी तो सारे वृंदावन के फेस्टिवल शुरू होंगे कार्तिक तक। फिर दिसंबर के बाद गौर पूर्णिमा तक सारे कौन से, मायापुर। तो ये प्रभुपाद के विशेष देन है, एक धाम कुछ महीनों के लिए, फिर दूसरा धाम, फिर तीसरा धाम। तो इसलिए वैकुंठ का एक गुण है, और वो गुण क्या है, अखंडित उत्सव। तीसरे स्कंद में ये शब्द आता है जहां ये व्यासदेव लिखते हैं या शुकदेव गोस्वामी कहते हैं अखंडित उत्सव, मतलब वैकुंठ में उत्सवों का कभी खंडन नहीं है, उत्सव कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्सव श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें हमें भाग लेना चाहिए, और सब चीजों के लिए उत्सव है। हाँ, कृष्ण कथा हमारे कानों के लिए उत्सव है, भगवान का दर्शन आंखों के लिए उत्सव है, हाँ जीवा के लिए कृष्ण प्रसाद हाँ उत्सव है। तो इस प्रकार से इन सारे उत्सव में हमें उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। उत्सव में भाग लेने से हमें क्या आता है, उत्साह। तो इसलिए उत्सव में भाग लेने के लिए हमें ढीले नहीं होना चाहिए, उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के, जगन्नाथ पुरी धाम के, समवेत गौर भक्त वृंद के, श्रील प्रभुपाद के, विदाई गौर प्रेमानंदे
की।